بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتا متروں، آج کے کارکرم کا شبھارمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 154 سے 157 آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری پرہیزگار۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور جو لوگ ایشور کے مارگ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو جیوت ہیں پرندو تم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور نسندے ہم تھوڑے بھے، تھوڑی بھوک، کچھ جان مال اور اتپاد میں کمی سے تمہاری پریکشا لیں گے، اور ہے پیغمبر، آپ دھیروانوں کو شبھ سوچنا دے دیں جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ نسندے ہم ایشور ہی کے لیے ہیں اور اسی کی اور واپس جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پالنہار کی اور سے آشیرواد اور دیا ہے، اور یہی لوگ صحیح مارگ پر ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز. آج بدھوار ہے, آذر کی 10, ربیع الثانی کی 25 اور دسمبر کی پہلی تاریخ. شروع ہمارا یہ کاریکرم آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9390 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہمیں آشا ہے کہ ہمارا آج کا پرسارن بھی آپ کو اوشیہ پسند آئے گا. پتر ویوہار کے لیے ہمارے پتے نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir. جبکہ تازہ سماچاروں سے اوگت ہونے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi. श्रोताओ हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा नोट कर लें. सबसे पहले आप सदा की भांति देश विदेश के समाचार सुनेंगे. उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा. उसके पश्चात आप एड्स के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल. श्रोताओ ये तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनेंगे. اور اب آپ ریڈیو تہران سے سماچار سنیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش. نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ اب بائیڈن ایران کے خلاف ڈنگ نہیں مار سکتے. انہوں نے ایران سے ڈپلومیٹک مقابلہ کر کے خود کو پھنسا لیا ہے. نکٹ ورتی سوتر نے بتایا کہ یوروپیہ پکش وینا میں ہونے والی پرمانو وارتا کو جلد ختم کرنا چاہتا ہے. یمنی سینا نے سعودی عرب کے آدھونک ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. جموں کشمیر میں بھاجپا کے ایک نیتا نے کہا ہے کہ ایک شرط کے ساتھ راجیہ کا درجہ بحال کر دیا جائے گا. اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے.
نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کا رویہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تراس دی تھا. نیو یارک ٹائمز نے ایران کے مقابلے میں امریکہ کے پور راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتیوں کو غلط بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ٹرمپ کی نیتی نہ کیول ایران بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے بھی تراس دی تھی. پرسدھ استمبھ کار تھامس فریڈ مین نے نیو یارک ٹائمز میں اپنے لیکھ کے ایک بھاگ میں لکھا ہے کہ امریکہ کے پور راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والے پرمانو سمجھوتے سے ایک پکشیہ روپ سے نکلنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ شیت یدھ کے بعد کا سب سے مورکھتا پورن اور غیر رچناتمک فیصلہ تھا. نیو یارک ٹائمز کے لیکھ میں آیا ہے کہ وینا وارتا میں ہونے والی پرگتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ایران پہلے سے ادھک تیاری اور مضبوطی کے ساتھ وینا وارتا میں بھاگ لے رہا ہے. فریڈ مین نے اسی پرکار اپنے لیکھ کے ایک انیہ بھاگ میں لکھا ہے کہ اس بار وینا وارتا میں بائیڈن سرکار کے پاس تروپ کا کوئی پتہ نہیں ہے اور اب بائیڈن ایران کے خلاف ڈینگ نہیں مار سکتے اور ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک مقابلہ کر کے انہوں نے خود کو پھنسا لیا ہے. کہتے ہیں کہ بدھوار کو وینا میں پرمانو وارتا کا تیسرا دور ہونے والا ہے اور پرتبندھوں کی سماپتی اس دور کی وارتا کا مکھیہ بندو ہوگا.
پرمانو سمجھوتے کے سنیکت آیوگ کی بیٹھک میں ہونے والی سہمتی کے آدھار پر امریکہ کے اتیاچار پورن پرتبندھوں کی سماپتی کے لیے سنیکت ورکنگ گروپ ایک بار پھر سکری ہو گیا ہے. ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान के वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार अली बाकरी गनी और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी एनरिका मोर के बीच भेंटवार्ता हुई। इस मुलाकात में पिछले दिनों होने वाली वार्ताओं का जायजा लिया गया और आगे भी वार्ता का क्रम जारी रखने पर बल दिया गया। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी एनरिका मोर ने 5 महीने के अंतराल के बाद वियना वार्ता को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि ईरान प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहा है। दूसरी ओर यूरोपीय कूटनीतिकों का कहना है कि वियना वार्ता में ईरान के सेंट्रीफ्यूज का मुद्दा मतभेद का विषय बना हुआ है। यूरोपीय कूटनीतिकों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वियना वार्ता में जिन मुद्दों मतभेद हैं उनमें ईरान के सेंट्रीफ्यूज का मामला भी है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूरोपीय कूटनीतिकों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि सोमवार से ईरान पर लगे प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए वार्ता शुरू हुई है। यूरोपीय संघ के कूटनीतिकों का कहना है कि अगर उन्होंने ये साबित नहीं किया कि इस मुद्दे को लेकर वो गंभीर है तो हमें समस्याएं होंगी। अगले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी ओर मंगलवार को भी ईरान और गुट 4-1 ने प्रतिबंधों की समाप्ति के बारे में सघन वार्ता की।
यूरोपीय वियना में होने वाली परमाणु वार्ता को जल्द खत्म करना चाहते हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार एक जानकार सूत्र ने बताया है कि वियना में जो परमाणु वार्ता हो रही है, यूरोपीय पक्ष वार्ता के इस दौर को जल्द से जल्द खत्म किए जाने का इच्छुक है। वार्ताकार टीम के निकटवर्ती सूत्र ने समाचार एजेंसी तस्नीम के पत्रकार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि ईरान के वार्ताकार टीम इस बात को प्राथमिकता दे रही है कि जब तक जरूरी हो वार्ता को जारी रखा जाए। इसी प्रकार जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार वार्ता में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि यूरोपीय पक्ष हर चीज के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण जरूरी समझते हैं, जबकि ईरानी वार्ताकार टीम ने कल की बैठक में बल देकर कहा था कि यूरोपीय देशों को चाहिए कि वे अपनी स्वाधीनता की रक्षा करें और साथ ही उन्हें जान लेना चाहिए कि अमेरिका ने एक पक्षीय रूप से परमाणु समझौते से निकलकर स्वयं को वार्ता में भाग लेने से वंचित कर लिया है। इस्लामिक गणतंत्र ईरान की वार्ताकार टीम ने वार्ता में प्रगति के संबंध में अपने ताजा सुझावों व प्रस्तावों को पेश किया है। प्राप्त समाचारों के अनुसार वियना में होने वाली परमाणु वार्ता में भाग लेने वाले दूसरे पक्षों ने भी ऐलान किया है कि वे प्रतिबंधों के समाप्त होने के संबंध में गंभीर हैं।
फार्स न्यूज के अनुसार लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मांग की है कि सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित करके क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। ग्रीनफील्ड ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक में ज़ायनी शासन का समर्थन करते हुए कहा कि इसराइल के प्रति ईरान की नफरत को क्षेत्र में देखा जा सकता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रसंघ में इसराइल विरोधी पूर्वाग्रह महसूस किया जाता है। अमरीकी प्रतिनिधि ने कहा कि पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित की जाने वाली हर महीने की बैठक में इसी प्रकार के वातावरण का आभास होता है। राष्ट्रसंघ में अमरीकी प्रतिनिधि का यह बयान ऐसी स्थिति में आया है कि जब ईरान ने क्षेत्र में आतंकवाद विशेषकर दाइश विरोधी अभियान चला रखा है। तेहरान के इस प्रयास की कई बार इराक और सीरिया की सरकारों ने सराहना की है।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। संयुक्त अरब इमारात यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि संयुक्त अरब इमारात का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही ईरान का दौरा करने वाला है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी अनवर करकाश ने रॉयटर से बात करते हुए कहा कि संयुक्त अरब इमारात का एक प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार के लिए तेहरान का दौरा करेगा। अनवर करकाश ने दावा किया कि संयुक्त अरब इमारात को ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों पर चिंता है। संयुक्त अरब इमारात के इस वरिष्ठ अधिकारी ने आर्थिक वार्ता और सहयोग ईरान के साथ विश्वास बहाली की कार्रवाइयों का हिस्सा करार दिया और कहा कि इसमें काफी समय लग सकता है। अनवर करकाश का कहना था कि अगर ईरान की परमाणु वार्ता का परिणाम सकारात्मक रहता है तो ईरान की नीतियों के बारे में पाई जाने वाली सारी चिंताएं खत्म नहीं होंगी।
एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कहना है कि लगभग 20 करोड़ बच्चे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 20 करोड़ बच्चे अफगानिस्तान, नाइजीरिया और कांगो सहित दुनिया युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आंकड़े पिछले एक दशक के दौरान अपने उच्च स्तर पर है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 13 देशों में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों की संख्या 1,60,00,000 है, जबकि 2019 की तुलना में इसमें लगभग 20% वृद्धि हुई है।
यमनी सेना ने सऊदी अरब के एक आधुनिक ड्रोन विमान को मार गिराने का दावा किया है। यमनी सेना ने ऐलान किया है कि देश के सैनिकों ने पश्चिमोत्तरी यमन में सऊदी अरब के गठबंधन के एक जासूसी ड्रोन विमान को मार गिराया है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता यहिया सरी ने बुधवार को ऐलान किया कि उमरान और सादा प्रांतों के बीच एक स्थान पर सऊदी गठबंधन के ड्रोन विमान को मार गिराया गया। यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता ने कहा कि देश की एयर डिफेंस यूनिट ने ईश्वर की कृपा से सऊदी अरब के चीन निर्मित CH-4 ड्रोन विमान को पहचाना और सुबह तड़के जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल से इस आधुनिक ड्रोन को मार गिराया। यमनी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि जिस मिसाइल से ड्रोन विमान को मार गिराया गया उसका अभी तक अनावरण नहीं किया गया है। यमन की सशस्त्र सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सऊदी गठबंधन का ये ड्रोन विमान उमरान और सादा प्रांतों के बीच अमीशा क्षेत्र में जासूसी कर रहा था।
सऊदी गठबंधन ने रेड सी में एक बमबार नौका को तबाह करने तथा एक ड्रोन विमान को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी गठबंधन ने बुधवार 1 दिसंबर को दावा किया है कि दक्षिणी रेड सी में यमन के अंसारुल्ला आंदोलन की एक बमबार नौका को तबाह कर दिया गया, जबकि सना के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ने वाले एक ड्रोन को इंटरसेप्ट और मार गिराने का भी दावा किया है।
तालिबान की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रभारी ने अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि से कतर में कूटनीतिक आर्थिक एवं मानवाधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद दूसरे चरण की वार्ता में अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों ने कतर में वार्तालाप किया। तालिबान की ओर से अमीर खान मुत्तकी और अमेरिका की ओर से टॉम वेस्ट ने वार्ता में भाग लिया।
जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेता का कहना है कि टारगेट किलिंग की घटना खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जब टारगेट किलिंग की घटनाएं बंद हो जाएंगी और आम आदमी बिना किसी डर के मुक्त रूप से घूमने लगेगा तो क्षेत्र का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कौल ने कहा कि इसमें भाजपा नेताओं को मारा जा रहा है या गैर कश्मीरियों को या गैर मुस्लिमों को, कुछ मुस्लिमों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हम हर टारगेट किलिंग का विरोध करते हैं और कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और भाजपा इस मांग का समर्थन करती है। कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब स्थिति में सुधार होगी, जब ये स्थिति सामान्य होगी, तब राज्य का दर्जा बहाल होगा। और इसी के साथ रेडियो तेरह से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، راجنیتک چرچا کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ ایران اور سیریا کے بیچ گھنشٹ ہوتے سمبندھ، عراق کے سنسدیے چناؤں کے انتم پریڑام اور بھارت کی راجیہ سبھا کے سانسدوں کے نلمبن کے وشیوں کو آج کی چرچا میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ ایران اور سیریا کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے آدھار پر کسٹم کی پیچیدگیوں سے بچتے ہوئے دونوں دیش آرتھک گتیویدھیوں کو اب وستار دے سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ لے کر اپستھت ہیں احمد عباس۔
شریکتو سوریا میدانی وسیع سیریا۔
سیریا پر آتنکیوں کے حملے کو ناکام بنا دینے کے 2 سال بعد اب سیریا اور اسلامی گنتنتر ایران کے بیچ جو سیریا کا رنتک ساجیدار ہے، ویاپارک سہیوگ کے لیے حالات انکول ہو گئے ہیں۔ ان دنوں دونوں دیشوں کے ادھیکاری ایک دوسرے کا دورہ کر رہے ہیں اور آرتھک گتیویدھیوں کے لیے پریاس تیز ہو گئے ہیں۔ ایران اور سیریا کے سنیکت آرتھک آیوگ کی اور سے جو سمیلن اور بیٹھکیں کروائی جا رہی ہیں، ان کے نتیجے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپسی سہیوگ میں تیزی سے وردھی ہو رہی ہے۔ 2011 میں ایران اور سیریا کے بیچ ہستاکشرت سمجھوتے کے آدھار پر یہ راستہ کھل گیا ہے کہ کسٹم کی پیچیدگیوں سے بچتے ہوئے دونوں دیش آرتھک گتیویدھیوں کو وستار دے سکیں۔
در سال 2011 قانون تجارت آزاد بین ایران و سوریه انجام شد۔
اس وبھاگ سے جڑے ورشٹھ ایرانی ادھیکاری نے بتایا کہ دونوں دیشوں کے بیچ آزاد ویاپار کا قانون بن چکا ہے۔ اس کے آدھار پر دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے اتپادوں کے لیے کسٹم ڈیوٹی بہت گھٹا دی۔ اس پر صحیح پرکار سے عمل ہونا چاہیے، اسے لاگو کیا جانا چاہیے۔ آج ایران سے 2905 پرکار کے اتپاد سیریا کو نریات کیے جاتے ہیں۔ اس کھیتر میں نویش کی ضرورت ہے۔ ایرانی ویاپاریوں کو ان کھمتاؤں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سمے سیریا کا پنر نرماڑ چل رہا ہے اور اس دیش کو کچے مال کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سیریا کو جنگ کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچا۔ ادھینوں سے پتا چلا ہے کہ سیریائی نجی سیکٹر ایران کے اتپادوں میں خاص دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ ایران کے اتپادوں کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور پوروی ایشیا سے لائے جانے والے اتپادوں کی تلنا میں ایرانی اتپاد کافی کفایتی داموں میں مل جاتے ہیں۔ سیریا کے ادھیکاری کا کہنا تھا کہ سیریا کو کرشی اور ادیوگوں کے لیے کچے مال کی کافی ضرورت ہے۔ پی وی سی اور پروپولین جیسی سامگریوں کو سیریا ایران سے خرید رہا ہے۔ یہ چیزیں سمندری راستے سے بھی اور زمینی راستے سے بھی ایران سے سیریا لائی جا سکتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور سیریا دونوں ہی مل کر عراق کا راستہ پوری طرح کھول دیں تاکہ سیریا اپنی ضرورت کی چیزیں اس راستے سے منگوا سکے۔ ایلپو سے IRIB کے لیے الہام عابد کی رپورٹ۔
عراق کے سنسدیے چناؤوں کے بعد کئی دنوں کی اٹکلوں کے پشچات آج چناؤوں کے پریڑام گھوشت کر دیے گئے۔ اس گھوشنا کے بعد اب سب کی نگاہیں عراق کے فیڈرل کورٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ وستار سے بتا رہے ہیں اختر عباس۔
بعد اکمال الاجراءات القانونیت کافا۔
عراق کے راجنیتک دلوں کی اور سے شکایت کیے جانے کے 51 دن بعد آخرکار عراق کے سنسدی چناؤ کے انتم پریڑاموں کا اعلان ہو گیا اور دیش کے مکھیہ چناؤ آیوگ نے چناؤ جیتنے والی پارٹیوں اور جیتنے والے 329 سانسدوں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔
تم التعامل مع جميع الشكاوى۔
عراق کے مکھیہ چناؤ آیوگ کے پروکتا جلیل عدنان خلف نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس پوری اودھی میں ہم نے راجنیتک دلوں کی شکایتوں کی جانچ کی۔ اعتراض کی وجہ سے 5 سیٹوں پر کچھ آنشی بدلاؤ ہوئے، لیکن چناؤ کے مکھیہ پریڑام پر اس کا کوئی پربھاؤ نہیں پڑا۔ عراق کے مکھیہ چناؤ آیوگ کے بیان کے انوسار صدر دھڑے کو 72 سیٹیں، تقدم پارٹی کو 37 سیٹیں، قانون گٹھ بندھن کو 33 سیٹیں، کردستان ڈیموکریٹ کو 31 سیٹیں اور الفتح کو 18 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ سنسد کی باقی سیٹوں پر دیش کی 13 پارٹیوں کے امیدواروں تتھا کچھ پر سوتنتر امیدواروں نے قبضہ کیا ہے۔ انتم چناؤ پریڑام کے اعلان کے بعد اب سب کی نگاہیں عراق کی فیڈرل عدالت پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ عدالت تین دن کے اندر یا تو چناؤ پریناموں کی پشٹی کرے گی یا اگر اس کو کچھ نوٹ لگانے ہوں گے تو وہ اس کو چناؤ آیوگ کی اور لوٹا دے گی۔ جلال خالدی، IRIB نیوز، بغداد۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ بھارت کی راجیہ سبھا کے سانسدوں کا نلمبن نرست نہیں ہوا ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ یہ سانسد معافی مانگے اور نلمبت سانسد معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
راجیہ سبھا کے 12 سانسدوں کے نلمبن کے مدعے کو لے کر جن پر پچھلے صدر کے دوران ہنگامہ کرنے اور آشوبنیہ آچرن کا آروپ ہے، آج سنسد کے شیت کالین ستر کے تیسرے دن بھی ہنگامہ ہوا اور وپکش نے معافی کی شرط کو ٹھکراتے ہوئے نلمبن کو واپس لیے جانے کی مانگ کی۔ اس مدعے کو لے کر راجیہ سبھا کی کارواہی کافی پربھاوت رہی۔ راجیہ سبھا کی ادھیکش وینکیا نائیڈو نے 12 سانسدوں کا نلمبن واپس لیے جانے کی وپکش کی مانگ ٹھکرا دی ہے۔ سنسدیہ معاملوں کے منتری پرہلاد جوشی نے کہا کہ یہ سانسد کم سے کم پشچاتاپ کریں۔ سرکار کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ یدی یہ سانسد معافی مانگ لیں تو ان کا نلمبن سماپت ہو سکتا ہے، لیکن وپکش کو معافی مانگنے کی شرط سویکار نہیں ہے۔ وپکش کے سانسدوں نے سنسد پریسر میں مہاتما گاندھی کی پرتیما کے نکٹ ویرودھ پردرشن کیا اور سانسدوں کا نلمبن واپس لیے جانے کی مانگ کی۔ پردرشن کر رہے سانسد ایسے پلے کارڈز اٹھائے تھے جن پر لوک تنتر بچاؤ جیسے نعرے لکھے تھے۔ ترنمول کانگریس سانسد ڈولا سین نے کہا کہ سانسدوں کا نلمبن ان لوگوں کا اہنکار ہے جو بہومت میں ہیں۔ سنسد کے نچلے سدن لوک سبھا میں وپکش نے دیش میں بڑھتی مہنگائی اور کسانوں کے مدعے کو لے کر سرکار کو گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ لوک سبھا میں کسان آندولن کے دوران مارے گئے کسانوں کا مدعا بھی اٹھا اور وپکش نے سرکار سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس مرنے والے کسانوں کا کوئی آنکڑا ہے جس کے انوسار ان کے پریجنوں کو معاوضہ دیا جا سکے۔ کیندری کرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے سدن میں کہا کہ سال بھر سے چل رہے کسان آندولن کے دوران مارے گئے کسانوں کا سرکار کے پاس کوئی آنکڑا نہیں ہے، اس لیے معاوضے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ کانگریس نے اس مدعے پر بھی سدن میں چرچا کرانے کی مانگ کی ہے۔ کسان سنگٹھنوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے آندولن کے دوران 700 سے ادھک کسانوں کی موت ہوئی ہے، جن کے پریجنوں کو اچت معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ راجیہ سبھا کے 12 سانسدوں کے نلمبن کو لے کر سرکار اور وپکش کے بیچ گتیرودھ جاری ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم سنا۔ اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اپنا ساپتاہک کاریکرم آج کل، لیکن اس سے پہلے پیش ہے ایڈز دیوس کے سمبندھ میں وشیش کاریکرم۔
दोस्तों विश्व एड्स दिवस पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना है। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 37.9 मिलियन लोग HIV के शिकार हो चुके हैं। दुनिया में प्रतिदिन 980 बच्चे HIV वायरस से संक्रमित होते हैं, जिनमें से 320 की मौत हो जाती है।
विश्व एड्स दिवस सबसे पहले अगस्त 1987 में जेम्स डब्ल्यू बोन और थॉमस नेटर नाम के व्यक्ति ने मनाया था। जेम्स डब्ल्यू बोन और थॉमस नेटर विश्व स्वास्थ्य संगठन में एड्स पर ग्लोबल कार्यक्रम WHO के लिए अधिकारियों के रूप में स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में नियुक्त थे। जेम्स डब्ल्यू बोन और थॉमस नेटर ने WHO के ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एड्स के डायरेक्टर जोनाथन मान के सामने विश्व एड्स दिवस मनाने का सुझाव रखा। जोनाथन को विश्व एड्स दिवस मनाने का विचार अच्छा लगा और उन्होंने 1 दिसंबर 1988 को विश्व एड्स डे मनाने के लिए चुना। बता दें कि 8 सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवसों में विश्व एड्स दिवस शामिल है।
दुनिया भर में हर साल HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व एड्स दिवस की थीम अलग अलग रखी जाती है। एड्स एक खतरनाक बीमारी है। एड्स की बीमारी का काफी देर बाद पता चलता है और मरीज भी HIV टेस्ट के प्रति सजग नहीं रहते, इसलिए अन्य बीमारी का भ्रम बना ही रहता है। इस गंभीर समस्या से बचाव का सबसे पहला चरण एड्स के लक्षण को पहचानना है। शुरुआती दौर में विश्व एड्स दिवस को सिर्फ बच्चों और युवाओं से ही जोड़कर देखा जाता था।
विश्व एड्स दिवस के लिए हर साल नया थीम या नारा दिया जाता है और इस साल का नारा है असमानता खत्म करो, एड्स खत्म करो और महामारी खत्म करो। पिछले साल की थीम थी HIV महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव। 1959 में अफ्रीका के कांगो में एड्स का पहला मामला सामने आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जब उसके रक्त की जांच की गई तो पुष्टि हुई कि उसे एड्स है। 1980 की शुरुआत में ये बीमारी सामने आई, जिसके बाद अब तक पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग इस बीमारी से जान गंवा चुके हैं।
नवंबर 1990 को लाइफ नामक पत्रिका ने डेविड नामक एक युवा की फोटो प्रकाशित की थी। उसका बदन कमजोर और लकड़ी की तरह सूखा हुआ था। वो अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था और उसके परिजन आसपास खड़े रो रहे थे। इस फोटो ने दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया और उसके बाद से दुनिया वाले इस खतरनाक बीमारी की ओर से सजग हो गए। डेविड अमेरिका के ओहायो राज्य के छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था और वहीं पर वो पला बढ़ा था। 18 साल की उम्र में उसे पता चला कि वो HIV से संक्रमित है।
बताया जाता है कि जिस दिन डेविड का निधन हुआ उस दिन उसकी माँ हॉस्पिटल आई थी और उन्होंने फेरर से कहा था कि उनके बेटे के साथ उनकी अलविदाई की एक यादगार तस्वीर ले, और इस शर्त के साथ कि डेविड की इस तस्वीर में वित्तीय पहलू न हो। यादगार फोटो तो ले ली गई और उसके बाद ये तस्वीर हजार समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपी और पूरी दुनिया में इस पर अनेक तरह के कार्यक्रम बने।
फेरर की तस्वीर को दुनिया के सामने आने को 3 दशक हो गए और तब से लेकर आज तक इस तस्वीर ने एड्स की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में अहम भूमिका अदा की है। हर साल दुनिया भर के संगठन और व्यक्ति एचआईवी की महामारी की ओर ध्यान दिलाते हैं, एचआईवी के कलंक के खिलाफ बोलते हैं और बढ़ती प्रतियोगिता को रोकने के लिए कदम उठाते हैं।
दोस्तों, इन वर्षों के दौरान दुनिया के बहुत से देशों ने एड्स के बारे में लोगों के विचारों को परिवर्तित किया है। वर्षों तक इस बीमारी का इनकार किया जाता रहा और इसको छिपाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन छिपाने और इनकार से बीमारी खत्म नहीं होती। जब दुनिया इस तरफ विशेष रूप से ध्यान देने लगी तो एड्स की बीमारी के उपचार में प्रगति भी हासिल हुई। वर्ल्ड एड्स डे मनाने का उद्देश्य एचआईवी संक्रमण की वजह से होने वाली महामारी एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि एचआईवी या एड्स क्या है। एचआईवी एक प्रकार के जानलेवा इन्फेक्शन से होने वाली गंभीर बीमारी है। लोग इसे आम बोलचाल में एड्स के नाम से जानते हैं। इस रोग में जानलेवा इन्फेक्शन व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है, जिसकी वजह से शरीर सामान्य बीमारियों से लड़ने में भी अक्षम होने लगता है।
एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएशन वायरस के संक्रमण के कारण होने वाला महामारी का रोग है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने साल 1995 में विश्व एड्स दिवस के लिए एक आधिकारिक घोषणा की थी, जिसके बाद से दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इतने सालों बाद भी अब तक एड्स का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए क्या किया जाए। इस बारे में डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं ने अनेक रास्ते बयान किए हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण रास्ता सूचनाओं का आदान प्रदान और मीडिया पर भरोसा करना है।
एचआईवी एड्स से पूरे दुनिया के लोग परेशान हैं। इसका कारण यह है कि दरअसल ये एक बेहद गंभीर और लगभग असाध्य बीमारी है, लेकिन कई बार समय से पता चल जाने या बीमारी की ज्यादा न बढ़ने पर पता चलने से इस पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इसके उपचार के लिए हम अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी इस्तेमाल करके राहत पा सकते हैं, यानी आयुर्वेदिक औषधि भी एचआईवी या एड्स की चिकित्सा की जा सकती है। ये बात इस विषय पर हुए कई शोधों और आयुर्वेदिक औषधियों के पूर्ण विश्लेषण के बाद ही पता चली है। एचआईवी की स्थिति में शतावर व सफेद मूसली के सम्यक प्रयोग से सहयोग मिल सकता है, लेकिन एचआईवी से बचने के लिए सबसे अधिक संयम व सदाचार के पालन पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रभावित मरीजों पर आयुर्वेदिक औषधि के परीक्षण, विश्लेषण व संरक्षण पर बल दिया जाना चाहिए।
दोस्तों, एड्स ऐसी बीमारी है जिसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और यहाँ तक कि सुरक्षा आयाम होते हैं, और दुनिया के बहुत से देशों में इसकी रोकथाम और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने में मीडिया अहम भूमिका अदा कर रही है। वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानकारियों को आम करने और इसके बारे में प्रशिक्षण से इस खतरनाक बीमारी को समाज में फैलने से रोका जा सकता है और समाज को इस खतरनाक और लाइलाज बीमारी से सुरक्षित रखा जा सकता है।
प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तक सारे संचार माध्यमों को इस बीमारी से लड़ने में लगाया जा सकता है, ताकि ये मीडिया विभाग अपने अपने स्तर पर अपने अपने संवाददाताओं को इस खतरनाक और असाध्य बीमारी के बारे में बताएं और उनके पास जो भी सूचनाएं और जानकारी हैं उन्हें अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के हवाले करें। आज ये बात पूरी दुनिया के लिए साबित हो चुकी है कि दुनिया का हर वो व्यक्ति जो एड्स का शिकार हो सकता है उसे प्रशिक्षण और जानकारी की जरूरत है। केवल जवान दूषित व संक्रमित सीरिंज के प्रयोग से ही एड्स का शिकार नहीं होते। इस खतरनाक वायरस ने समाज के एक बड़े हिस्से को जकड़कर रख दिया है।
इतिहास पर नजर डालने से पता चलता है कि 80 के दशक में खतरनाक और असाध्य बीमारी से डराने की लहर और इन खबरों के मीडिया पर आने की वजह से अमेरिका और यूरोप में ये मुद्दा एक डरावना सपना बन गया था, जिसकी वजह ये थी कि इस मुद्दे को सीमा से ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिया गया था। दोस्तों, हम सबको याद है कि 2 साल पहले दुनिया को कोरोना नामक एक महामारी का सामना हुआ जो अब तक जारी है। इस महामारी ने दुनिया को तहस नहस करके रख दिया और पूरी दुनिया के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए।
कोरोना महामारी के आरंभ में पूरी दुनिया डरी हुई थी और किसी को भी ये ज्ञात नहीं था कि क्या होने वाला है। इसका एक कारण ये था कि हम इस बीमारी के बारे में अनजान थे और उसके विभिन्न पहलुओं पर हमारी नज़र नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब इस महामारी के बारे में लोग जानने लगे, मेडिकल प्रोटोकॉल पर अमल करने लगे, तो ये महामारी भी एक आम बात बन गई और अब लोग इसके साथ ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी तरह एड्स की बीमारी भी है। इस असाध्य बीमारी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका सावधानी और समझदारी है।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आज कल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम क्षेत्र में संकट उत्पन्न करने और क्षेत्र पर युद्ध थोपने में अमेरिका की भूमिका की चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, दशकों से अमेरिका क्षेत्र में मौजूद है और उसकी उपस्थिति के परिणाम में क्षेत्र को विभिन्न समस्याओं व चुनौतियों का सामना रहा है। ईरान के इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने 2 साल पहले पवित्र नगर कुम में दिए गए अपने एक भाषण में क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति खत्म किए जाने को एक आवश्यकता बताया था। उन्होंने अपने उस भाषण में कहा था कि अमेरिकी इस क्षेत्र में युद्ध लाए हैं, मतभेद व फूट लाए हैं, बर्बादी व तबाही लाए हैं और आधारभूत संरचनाओं की तबाही लाए हैं। ये क्षेत्र इलाके के देशों में अमेरिकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता। क्षेत्रीय राष्ट्र अमेरिकी उपस्थिति को कबूल नहीं करते हैं और निसंदेह लोकतांत्रिक सरकारें अमेरिका की सैनिक उपस्थिति को स्वीकार नहीं करती हैं।
ईरान की इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता के अनुसार पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में उसका हस्तक्षेप संकट उत्पन्न होने, अस्थिरता, असुरक्षा और मतभेद उत्पन्न होने का कारण है। और क्षेत्रीय राष्ट्रों व सरकारों के एक दूसरे से सहयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
इसी प्रकार ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने पैगम्बर इस्लाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपने भाषण में कहा था कि वर्चस्ववादी ज्ञान और तकनीक का प्रयोग दूसरे राष्ट्रों के स्रोतों की लूट खसोट करने और युद्ध थोपने जैसे कार्यों के लिए करते हैं। सर्वोच्च नेता कहते हैं कि फिरौन का उत्पात व अत्याचार केवल मिस्र तक ही सीमित था, किंतु आज का फिरौन यानी अमेरिका वैज्ञानिक प्रगति का प्रयोग दूसरे देशों पर हमला करने और लूट खसोट के लिए करता है।
वर्षों से अमेरिका क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चुनौती बना हुआ है और क्षेत्र की सुरक्षा में वो विघ्न उत्पन्न कर रहा है और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। एक शताब्दी से अधिक का समय वो अनुभव इस बात का सूचक है कि विदेशियों ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके और आयातित सुरक्षा के माध्यम से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का संकट उत्पन्न कर रखा है। विदेशियों व वर्चस्ववादी देशों का लक्ष्य क्षेत्र के देशों को एक दूसरे से डराकर हथियार बेचना, उनके प्राकृतिक स्रोतों को लूटना और उन्हें आपस में लड़ाकर कमजोर करना है, ताकि अपनी मांगों व दृष्टिकोणों को आसानी से क्षेत्र के देशों पर थोप सकें। आज फारस की खाड़ी और उसके आसपास के अरब देशों में होने वाले परिवर्तनों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देश क्षेत्र के अरब देशों को ईरान से डराते हैं ताकि ये देश उनसे हथियार खरीदें। इन वर्चस्ववादी देशों के दुष्प्रचार का नतीजा है कि अरब देशों ने इन देशों से अरबों डॉलर का हथियार खरीद रखा है। ये वर्चस्ववादी देश कभी भी ये नहीं कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इसराइल है, जिसके पास 200 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स मौजूद हैं। ये वर्चस्ववादी देश कभी भी इसराइल के क्रियाकलापों का नाम भी नहीं लेते हैं, जबकि इन्हीं देशों ने जानियों को पश्चिम एशिया में बसाया है और मानवाधिकार की रक्षा का राग अलापने वाले पश्चिमी व यूरोपीय देश रक्त पिपासु इसराइल का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन ने जानियों को फिलिस्तीनियों की मातृभूमि में बसाने की भूमि प्रशस्त की।
दोस्तों, जो ये कहा जाता है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को भट्टी में जिंदा जलाकर मार डाला और ज़ायूनी मज़लूम हैं, उनका समर्थन किया जाना चाहिए, तो इस संबंध में बहुत से जानकारों का कहना है कि जो ये प्रचार किया जाता है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को भट्टी में जलाकर मार डाला है, तो उस वक्त पूरी दुनिया में यहूदियों की संख्या ही 60 लाख नहीं थी। और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मारा था, तो इसमें फिलिस्तीनियों या दूसरे देशों के नागरिकों का क्या दोष है? अगर ज़ायनी व यहूदी मज़लूम हैं तो उन्हें यूरोप के किसी देश में बसाया जाना चाहिए था, न कि फिलिस्तीन में, क्योंकि उनकी हत्या फिलिस्तीनियों ने नहीं बल्कि हिटलर ने की है।
ये किस प्रकार का मानवाधिकार का समर्थन है कि किसी को उसके घर और उसकी मातृभूमि से निकालकर दूसरों को उसकी जगह पर बसा दिया जाए? अगर पश्चिम व यूरोप मानवाधिकार की रक्षा के दावे में सच्चे हैं, तो उन्हें तथा कथित मजलूम यहूदियों व ज़ानियों को अपने यहाँ बसाना चाहिए, न कि फिलिस्तीन में। पश्चिम व यूरोप ज़ानियों के समर्थन में कहते हैं कि उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार है। कितनी अजीब बात है कि जो किसी के घर और जमीन पर कब्जा कर ले और जब उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, तो ज़ायूनी प्रदर्शनकारियों का दमन करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, बच्चों और महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हैं।
ज़ायूनी शासन ने 1948 से अपने अवैध अस्तित्व की घोषणा कर रखी है। इस दौरान उसने हजारों फिलिस्तीनियों को शहीद किया है। शहीद होने वालों में अबोध बालक और महिलाएं भी शामिल हैं। यही नहीं, ज़ायूनी शासन ने 40 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया है और वे दूसरे देशों में शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़ायूनी शासन ने जिन फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाला है, उनके घरों और ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, ज़ायूनी शासन इन फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि में वापसी का अधिकार भी नहीं दे रहा है। इसराइल के इस कृत्य पर मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देश व संस्थाएं अर्थपूर्ण मौन धारण किए हुए हैं।
दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि पश्चिमी व यूरोपीय देश तथा कथित मजलूम यहूदियों व ज़ायोनियों का समर्थन करते और उनकी वकालत करते हैं, और जब इन्हें यहूदियों व ज़ायोनियों द्वारा किए गए अपराध व अत्याचार की बात आती है तो पश्चिम व यूरोपीय देश अर्थपूर्ण चुप्पी साध लेते हैं। जो यहूदी व ज़ायोनी दूसरे देशों व क्षेत्रों से लाकर फिलिस्तीन में बसाए गए हैं, उन्हें यहूदियों व ज़ायोनियों ने फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से निकाल दिया। कितनी अजीब बात है कि पश्चिम यूरोपीय जालिम को मजलूम बताकर और दर्शाकर उसकी वकालत करते हैं, पर जब वास्तविक मजलूम की बात आती है तो इन देशों को सांप सूंघ जाता है। दूसरे शब्दों में फिलिस्तीन की मजलूम जनता पर 70 साल से अधिक समय से जो अत्याचार हो रहे हैं वो मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देशों के क्रियाकलापों का परिणाम है।
जो आंकड़े व सूचनाएं प्राप्त हैं उनके अनुसार पूरी दुनिया में हथियारों की जो बिक्री होती है उसका 31% भाग अमेरिका से विशेष है। अमेरिका ने 2005 में जो हथियार बेचा था उसकी मात्रा में इस समय 23% की वृद्धि हो गई है, और अमेरिका निर्मित हथियारों की सबसे अधिक बिक्री पश्चिम एशिया के देशों व क्षेत्रों में रही है। खुद अमरीकी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने पश्चिम एशिया में सैन्य हस्तक्षेप के लिए $7,000 अरब खर्च किए हैं।
रोचक बात यह है कि पश्चिम एशिया के देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप इस क्षेत्र में अधिक अराजकता का कारण बना है। अमेरिका और उसकी हां में हां मिलाने वालों ने सीरिया में आतंकवादियों का व्यापक समर्थन किया और कर रहे हैं, और उनके समर्थन का ही परिणाम है जो ये आतंकवादी आज तक मौजूद हैं। इन्हीं देशों ने आतंकवादी तत्वों को आधुनिकतम हथियारों से लैस किया, जिसकी वजह से कई लाख लोग हताहत व घायल हुए। सीरिया के बहुत से इलाके खंडर में परिवर्तित हो गए, और आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो आतंकवादियों के गढ़ समझे जाते हैं।
यही नहीं, अमेरिका ने राष्ट्रसंघ और सुरक्षा परिषद के अनुमति के बिना आतंकवादियों से मुकाबले के बहाने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया, जिसका दिशा निर्देशन वो स्वयं करता है। उसकी अगुवाई वाले गठबंधन के हमलों में अब तक कई सौ सीरियाई नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ का स्वीकार स्वयं अमेरिका कर चुका है। यही नहीं, अमेरिका ने इराक में भी आतंकवादी गुटों का समर्थन किया, जिसके नतीजे में दसियों हजार इराकी मारे गए। रोचक बात यह है कि बहुत से इराकियों की हत्या खुद अमरीकियों ने की है। यही कार्य उन्होंने सीरिया में भी किया है। दूसरे शब्दों में अमेरिका द्वारा आतंकवादियों का समर्थन सीरिया और इराक तक ही सीमित नहीं है, अफगानिस्तान और यमन जैसे देशों में होने वाली तबाही जग जाहिर है।
वर्ष 2001 में आतंकवाद से मुकाबला और सुरक्षा स्थापित करने के बहाने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, परंतु 20 वर्षों तक अमेरिका और नेटो के सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद है, पर आज तक वहां न तो शांति स्थापित हुई और न ही आतंकवाद का सफाया हुआ। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी व विदेशी सैनिकों की उपस्थिति बहुत सी समस्याओं की जनक है, जैसे 20 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान में मादक पदार्थों व पोस्ते की खेती में कई गुना की वृद्धि हो गई। मादक पदार्थों की तस्करी में भी कई गुना की वृद्धि हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि 20 वर्षों तक अमेरिकी व विदेशी सैनिकों ने अफगानिस्तान में क्या किया। दूसरे शब्दों में 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में अमेरिकी और विदेशी सैनिकों की उपस्थिति का एक नतीजा मादक पदार्थों की खेती और उसकी तस्करी में कई गुना की वृद्धि रही है।
दोस्तों, इस तरह 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो सैनिकों की उपस्थिति का एक परिणाम हजारों अफगान नागरिकों की हत्या है। जिन अफगान लोगों की हत्या की गई उनमें महिलाएं और अबोध बच्चे भी शामिल हैं। आज 20 वर्षों के बाद अफगानिस्तान के लोगों की जो दुर्दशा है वो भी इस देश में अमरीकी और विदेशी सैनिकों की उपस्थिति का परिणाम है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया में विदेशी विशेषकर अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति ने सामूहिक सुरक्षा को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है।
यही नहीं, पश्चिम एशिया के देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप इस बात का कारण बना कि कुछ क्षेत्रीय देश भी दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और अमेरिका ने इस काम के लिए उनका प्रोत्साहन भी किया। अमेरिका की हरी झंडी मिलने के बाद ही सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना यमन पर हमला कर दिया। ये हमला 26 मार्च 2015 से जारी है। इस हमले में अब तक दसियों हजार यमनी मारे जा चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मानवाधिकारों का राग लापने वाले देश सऊदी अरब को आधुनिकतम हथियारों से लैस भी करते हैं और उन्हीं हथियारों से वो यमन की निर्दोष जनता की हत्या करता है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया, विशेषकर पश्चिम एशिया की जो अधिकांश घटनाएं हैं, उनमें परोक्ष व अपरोक्ष रूप से अमेरिका और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वालों की भूमिका है और ये उनकी नीतियों का परिणाम है।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, अब समय है मुख्य समाचारों के सारांश का। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अब बाइडेन ईरान के खिलाफ डींग नहीं मार सकते। निकटवर्ती सूत्र ने बताया कि यूरोपीय पक्ष वियना में होने वाली परमाणु वार्ता को जल्द खत्म करना चाहते हैं। यमनी सेना ने सऊदी अरब के आधुनिक ड्रोन विमान को मार गिराने का दावा किया है। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज़। शुभरात्रि।